Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İmam-ı Ahmed ibn-i Hanbel rahmetullahi aleyh ki mutallik arz kiya tha ki aap sefer mein hain, rasta bhool gaye, kisi arabi ko dekha, jab unse jaakar rasta poocha to ek cheekh mari rote rote. To us par maine arz kiya tha ki ye jo hamare yahan buzurg Hazrat Sheikh Nabarullah Marqadahu ke yahan ek jumla tha جو خدام میں گھر والوں میں بہت مشہور تھا حضرت کے فقرے تو ایک ایک فقرے میں ساری داستان حضرت بیان فرما دیا کرتے تھے اب وہ جس کو فقرہ کہا گیا وہی سمجھے گا جو اس میں مبتلا ہوگا کہ مجھے کیا کہا گیا اور ہر وقت چلتے تھے اتنی شرمساری ہوتی تھی اسی لیے میں نے عرض کیا کہ وہ حضرت کی خدمت میں حاضری سے پہلے یا ستار یا ستار یا ستار یا ستار الوجود ہر وقت اس کا ڈر خوف رہتا تھا کہ وہ اور پھر حضرت اس طرح شفقت تھی کہ ان فقروں میں ان فقروں کے ذریعے دو ایک دو کلمے کے ذریعے حضرت ابھی میں نے وہ ریڈیو والوں کے بیان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو فرمایا تھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر تو عام طور پر تو یہی لکھا گیا ہے اس کو باب المزاح میں ذکر کیا گیا ہے اگرچہ یہ بھی بہت بڑی امت کے لیے تعلیم ہے بہت بڑا سبق ہے کہ ہر وقت ایک حال پر نہیں رہنا چاہیے احوال مختلف ہوتے ہیں کبھی ضرورت ہوتی ہے تعلیم کی کبھی تادیب کی کبھی مصنوعی غصے کے اظہار کی جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہو اس میں بھی ایسا نہ ہو کہ ہر وقت گھر والے یہ کہتے پھریں پڑوسیوں کو رشتہ داروں کو ملنے والوں کو کہ ہمارا گھر تو جہنم کدا بنا ہوا ہے اللہ تعالی ہمارے گھروں کو جنت بنائے حالانکہ اس کا جہنم کدا بنانے والا ایک ہی ہوتا ہے جس میں جس پر شیطان یہ کہتے ہیں وہ روز جاتے ہیں عاملوں کے پاس علاج کرانے کے لیے کہ اس کو جادو ہے اس کو جن ہے میں نے کہا کہ ہزار میں سے کوئی ایک آدھ کو بھی نہیں ہوگا لیکن ہاں شیطان ضرور سوار ہوتا ہے یہ ابھی روزوں میں تو اور زیادہ ذرا ذرا سی بات پر بھڑک جانا بیچارے بچے پھر ڈرتے رہتے ہیں بیوی ہر وقت ڈرتی رہتی ہے تو اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں کسی طرح صرف زبان سے بلا وجہ اجازت نہیں ہے تو پھر اس سے آگے مار پیٹ اور اس کی تو کہاں شریعت میں اجازت ہوگی وہ تو حرام ہے کسی طرح جائز نہیں ایک تھپڑ بھی جائز نہیں وہ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیان میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو وضربوہن قرآن پاک میں آیا ضرور ہے کہ ان کو مارو تو ہم نے تو ہمارے ترجمے میں ابھی چونکہ ہر جگہ یہی اشکال ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ بیویوں کو مارو تو میں نے مولانا رشید صاحب پورٹوگل سے تشریف لائے ہوئے تھے تو वो देख रहे थे, मैंने कहा यहाँ क्या क्या लिखा, क्या देखा आपने? तो उन्होंने पढ़ा जो लिखा हुआ था, तो मैंने कहा कि इसके साथ बीच में बढ़ा दो, उनको मारो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह। क्या ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि 100 कैंचियाँ मैं तुम्हें सोटियाँ मारूंगा, तो 100 इकट्ठे करके एक दफ़े, तो उसको तो एक मजाक हो जाएगा, 100 इकट्ठी बांधी हुई है, आपने ऐसे कर दिया उसको। तो हज़रत क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वद्रिबूहुन्ना, कि माना यह है कि उसी का दुपट्टा लो, उसको रोल करो, बच्चे जिस तरह खेलते हैं टावल से एक दूसरे के साथ, ये है इसकी इजाज़त, इससे ज़्यादा की कतन इजाज़त नहीं, वो तो फिर जहन्नम का दा हम बना रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जिन और भूत और जादू तो सवार नहीं होता, हाँ शैतान ज़रूर सवार होता है। तो इसकी कतन हमारे यहाँ कोई इजाज़त नहीं। तो हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनसे जाकर रास्ता पूछा, तो उन्होंने एक चीख मारी, अब रो रहे हैं ज़ारो कतार, और हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हैरान। तो उसी पर सुनाया था कि हज़रत शेख नबर अल्लाह मरकदहु के मकातीब, जब मैं हज़रत मौलाना लुधियानवी साहब को सुना रहा था, तो हज़रत ने, जब मैंने ये पढ़ा कि वो ज़करिया मस्जिद के चोर पकड़े गए, तो हज़रत ने उस पर जो तारीफ फरमाया था कि इन चोरों के पकड़े जाने पर मसर्रत का इजहार नहीं चाहिए, ऐसे उमूर बहुत बारीक होते हैं, तो वो तो हमारी तरह से आराम से ज़मीन पर बैठे हुए थे, टेक लगाए हुए, चश्मा निकाले हुए, टेक लगाकर आराम से वो अपना चश्मा हाथ में लेकर के खड़े हो गए, जिस तरह उन पर एक हाल तारी हो गया, अभी वो मंजर मेरे सामने है कि किस तरह वो खड़े हो गए, और जिस तरह कोई ऐलान करता है ज़ोर कि एक ही जुमला कि ये बात कुतुब ही कह सकता है। अल्लाह, तो हज़रत मौलाना हाशिम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक स्टेज का किस्सा सुनाया था, हज़रत मौलाना इलिया साहब नवर अल्लाह मरकदहु बानी तबलीग कहते हैं, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है और नात पढ़ी गई, तो जिस तरह ये अफ्रीकन को आपने देखा और शामियों को देखा रक्स करते हुए, तो वो झूम रहे हैं खड़े होकर के, हज़रत मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह हाल तारी हो गया उन पर। तो इसी तरह उन पर भी रोते हुए ये बात कुतुब ही कह सकता है, क्योंकि कैसे कुतुब कह सकता है कि कुतुब वही होगा कि जो अपने आप को, मैंने कहा नहीं कि घर जहन्नम का था क्यों बनते हैं कि आदमी अपने आप को फिरौन समझता है कि मैं हूँ और ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं हज़रत शेख नबर अल्लाह मरकदहु फरमाते थे कि प्यारो मैं कभी ना कहना, मैं के गले पर छुरी, यानी बकरी को जब ज़बा करते हैं तो वो बोलती है बेचारी मैं और छुरी उसके ऊपर चलती है, तो फरमाते हैं कि तुम भी अपने आप पर इस मैं पर छुरी फेर दोगे, कभी ना कहो कि ये अनानियत ख़त्म कर दो। तो जब आप अपने आप को हाकिम और जालिम नहीं समझेंगे घर में, तो फिर घर जन्नत बन जाएगा। तो ये इस पर उन्होंने जो जब रास्ता पूछा, तो उन्होंने भी यही सोचा कि ओहो ये तो रास्ता भटक गए हैं, तो मैं भी भटका हुआ हूँ, जो जन्नत का रास्ता खुदा ने दिखाया है उसको छोड़कर मैं दूसरे रास्ते पर चल रहा हूँ। तो इस पर उन्होंने आह की और बेहोश हो गए। तो जब उन्हें उनके हवास ठीक हुए, तो आगे और सुनिए कि इमाम अहमद फरमाते हैं कि मैं तो खड़ा सोच रहा हूँ कि ये मैंने तो रास्ता पूछा और ये काहे पर इतना चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं और इनका हाल ख़राब हो रहा है। तो मैंने दिल में ये सोचा कि ये बेचारे बहुत मुस्तर परेशान होंगे और ये मुसीबत ज़दा होंगे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, बहुत दिनों के फाके होंगे और इस परेशानी का इजहार किसी के सामने नहीं कर सकते, मुसीबत के मारे हैं, तो इसलिए एकदम अचानक इनको रोना आ गया, तो मेरे पास जो कुछ खाना है तोशा अपना मैं उनको पेश कर दूँ, ये दिल में ख्याल आया। तो वही जो अब तक सूफी बनकर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, आंखें दिखाई उन्होंने, फरमाया कि हज पर जा रहा है और मालिक के राजी होने पर इत्मीनान नहीं तुझे, तू रोजी देगा मुझे। और ये फरमाकर उन्होंने इशारा किया कि अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं कि वो चाहे तो ये सारा जंगल सोने से भर जाए। तो जैसे ही इशारा किया तो देखा कि दौलत ही दौलत सारी। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि या अल्लाह ये मैं कहाँ पहुँच गया और इनको क्या समझा मैंने और कितना अल्लाह का बुलंद मर्तबा इंसान है और उसको मैंने क्या समझ रखा था। तो इतने में गैब से आवाज़ आई कि वो तो ये फरमाकर बेचारे चुप हो गए, अपने हाल में हैं। तो गैब से आवाज़ आई, इमाम अहमद फरमाते हैं अब हम कहते हैं कि हमारे हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने इधर देखा, फरमा मारो उसको। तो फरमाते हैं कि वैसे ही ये मुरीद बना लेते होंगे मगर ये तो चला आ रहा है। हर चीज़ मुतवारत है इस उम्मत में। तो ये आवाज़ों के भी कि हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के उसमें मैंने हालात में उसी वक्त लिखा भी था 20-25 साल पहले उसी किताब में कि आवाज़ आई और हमने जाकर देखा तो कहने वाला न कोई वहाँ इंसान न कोई मादरजाद, रात को 2 बजे। तो इमाम अहमद फरमाते कि आवाज़ आई कि उन्होंने तो तुम्हें दिखाया कि वो ऐसे इशारा करें तो सारा सोने से भर जाए, लेकिन आवाज़ आई, हातिफ गैबी कहता है कि ये अगर अभी इशारा करें तो आसमान ज़मीन से लग जाए। तो अभी ये इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को क्या से क्या बनाना चाहते हैं सलफ़ी, और हैं क्या असल में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, वो तो ये हमारा वक्त बहुत महदूद होता है, वरना मैं अभी बयान करता कि सलातुन हुब्ब इलैया मिन दुनियाकुम। तो इसी के ज़ेल में जो उनकी पसंद की चीज़ें हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बयान की गई हैं। तो ये जो उन्होंने इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ सीखा वो किन से सीखा, जो अइम्मे सूफिया हैं जिनके नाम सिर्फ वहीं पर मिलते हैं सूफिया के यहाँ, बिशर हाफी उनसे सीखा, मारूफ करखी उनसे सीखा, हज़रत जुन्नून मिसरी रहमतुल्लाह अलैह उनसे सीखा। पहले भी हज़रत जुन्नून मिसरी रहमतुल्लाह अलैह का गुज़िश्ता साल भी शेर सुनाया था कि आखिरी वक्त में तबीब को ला रहे हैं, फरमाया कि तबीब ही ने तो मुझे बीमार किया, अरबी का शेर पढ़ा उन्होंने कि असबालीन मन बरखेज ए नादा तबीब के दर्द मंद इश्करा दारू ए जुजदीदार नेस्त। उन्होंने तो अरबी में कहा था, उसको किसी ने फारसी में बनाया कि तबीब हो लदी अमरदनी, कि तबीब ही ने तो मुझे बीमार किया है तो कौन से तबीब को लाओगे। तो हज़रत जुन्नून मिसरी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा, बिशर हाफ़ी से सीखा। कैसे सीखा बिशर हाफ़ी से, कि हज़रत बिशर हाफ़ी की अकीदत ऐसी थी जैसी कि शायद हमारे पीर मुर्शिद क़ुतुबुल अख़्ताब हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह से भी नहीं होगी, हम तो झूठे मोहब्बत के मुद्दे। वो उनसे सवाल किया गया इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से, इतना बड़ा इमाम जिनकी सबसे बड़ी मुसनद और इमाम बुखारी बुखारा से जाकर उनके पास जाकर पढ़े और तमाम मुहद्दिसीन दुनिया भर से पढ़ने के लिए उनके पास जाते थे। तो उनसे पूछा गया कि हज़रत ये मोहब्बत क्या है, मोहब्बत ये मीम पर ज़बर है, मोह पेश नहीं है, मोहब्बत तो मोहब्बत क्या है। تو امام احمد نے فرمایا کہ جب تک بشر حافی زندہ ہے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. کتنا ادب, اور ادب تو کیسے سکھاتے تھے, ان کے صاحبزادے کو دیکھا کہ وہ امام احمد دیکھ رہے ہیں اور وہ کوئی درس دے رہے ہیں یا کسی حدیث کی تشریح کر رہے ہیں جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ہے کہ خلقتہ بیدی. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا. تو اس کو جب وہ بیان کر رہے تھے تو بیدی کو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کرنے کے لیے آستین چوڑی یہاں تک تھی تو اس کو ایسے چڑھا کر ایسے ہاتھ ابھی کرنے جا رہے تھے دو ہاتھ کے, میں نے ہاتھ سے بنایا. امام احمد فرمایا نہیں نہیں, جو یہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرنا, انسان کی کاپی جائز چیز میں تو کر سکتا ہے, مخلوق کی کاپی کر سکتی ہے, لیکن حق تعالیٰ شانہ کا جو فعل ہے بیدی ہے اس کی کاپی کی جا سکتی ہے؟ وہ تو پھر وہ ہو جائے گا کہ ممبر پر اللہ جل شانہ کیسے براجمان ہیں, کیسے تشریف رکھتے ہیں. استوا علی العرش کی تشریح کرتے ہوئے کوئی اگر یوں کہے کہ کجلوسی علی ھذا المنبر, کیسے بیٹھے ہیں جس طرح میں ممبر پر بیٹھا ہوں, تو یہ تو امام احمد تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ خلقتہ بیدی, میں اشارہ بھی مت کرو اپنے ہاتھ سے, ہاتھ بند رکھو, کہ وہ ہاتھ سے بھی پاک ہے جس کے متعلق وہ خود اپنے متعلق فرماتا ہے کہ خلقتہ بیدی. اللہ تبارک و تعالی یہ ادب ہمیں بھی نصیب فرمائے. جو کچھ انہیں ملا اسی ادب کی وجہ سے ملا, کہ فرماتے ہیں بشر حافی کے متعلق کہ جب تک یہ زندہ ہیں میں نہیں بتاؤں گا کہ محبت کیا ہے. دعا مسلم.